اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار اور اللہ والا جانتے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اولیاء للہ ہو, اللہ کے اولیاء ہو, تو رب العزت کہہ رہا ہے فَتَمَنَّ الموت ان كُنْتُمْ صَادِقِينَ, تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے, اولیاء خدا ہوتا ہے, اس کی مثال میں نے پیش کی کہ وہ موت کی تمنا کرتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت سے میں اس کو واضح کیا ہوں. اولیاء خدا کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں اور خصوصیات ہوتے ہیں, وہ اللہ سے ہٹ کے کسی کو نہیں سمجھتا, وہ کسی سے تعلق ہی نہیں رکھتا. جب حضرت ابراہیم کے پاس ملک الموت آئی, کہنے لگی میں اللہ کے جانب سے, کہنے لگا کہ میں اللہ کے جانب سے آیا ہوں, آپ کی روح قبض کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں دیکھیں کس طرح کا دوست ہے میرا رب العزت کہ مجھے مارنا چاہ رہا ہے. تو آواز آتی ہے ابراہیم سے, کہہ دو کہ کس طرح کا دوست ہے کہ جو ہے ایک دوست سے ملنا ناپسند کرتا ہے. جب یہ سنا تو انہوں نے کہا اے ملک الموت فوری میری روح قبض کر, کہ میں اس کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ سے ہٹ کے جو ہے اولیاء خدا کسی ان کے ذہن میں اللہ سے ہٹ کر کسی چیز کا تصور نہیں ہوتا, صرف ہمیشہ جو ہے اسی کے لیے جو ہے سوچتے ہیں. امام علی فرماتے ہیں ان کی حالت اس طرح ہے جب وہ لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیوانہ ہے, ایک عجیب حالت میں ہے. وہ ایک حالت ہوتی ہے جیسا میں نے بیان کیا تھا کہ چھٹے امام کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ جب وہ ذکر میں مبتلا تھے, یعنی ذکر کیا کر رہے تھے, تو ایک حالت طاری ہو گئی. جب وہ حالت طاری ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا امام کو. تب نارمل ہونے کے بعد لوگوں نے جب پوچھا تو امام نے یہ بتایا کہ میں جو ذکر کر رہا تھا اب میری زبان سے رب العالمین ذکر کر رہا ہے, تو یہ جسم کس طرح تحمل کر سکے گا, سخت ہے جسم تحمل کرنا. دوسری جو خصوصیات جو ملتی ہے, ارادہ جو ہم کرتے ہیں, ہماری جو خواہشات ہوتی ہے, ہوائے نفس ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی کیا ایسی ہی ہے جیسا ہم ارادہ کرتے ہیں؟ نہ, خدا جو ارادہ کرتا ہے وہ ان کے لیے اہم ہوتا ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اس کا حال پوچھتے ہیں جب بیمار ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے فخر کو ترجیح دیتا ہوں ثروت سے, یعنی پیسوں سے. ایسے کئی واقعہ انہوں ایسے کئی باتیں کرتے ہیں, میں جو ہے صحت کو جو ہے وہ بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت پر. تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں ہیں, خدا جو چاہتا ہے ہم اس پر راضی ہوتے ہیں. وہ ہمیں پیسے والا بنائے یا ہمیں جو ہے فقیر بنائے, کسی بھی حالت میں وہ مریض بنائے, کسی بھی حالت میں وہ رکھے, ہم اس پہ راضی ہوتے ہیں. یعنی وہ جو چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں. یہ کیفیت اولیاء خدا کی ہوتی ہے. پہلی جو میں نے بتایا اللہ سے ہٹ کے جو ہے کوئی ان کے لیے جو ہے ارزش مند نہیں ہوتا. دوسرا ارادہ خدا. تیسری چیز جو ہے हमेशा वो शख्स को आप देखेंगे खलवत में रहेगा, तन्हाई में रहेगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता अगर अल्लाह वाला हो और अल्लाह से तन्हाई में गुफ्तगू ना करे। अल्लाह वाला ही आप देखेंगे तन्हाई पसंद होता है, यानी ये नहीं तन्हाई पसंद यानी कि जंगल में चले गया और जो है लोगों से कट गया, ये मुराद नहीं है। मुराद ये है कि कुछ वक्त जो है अल्लाह के लिए रखता है, बिताता है अल्लाह के लिए, ये खसूसियत होती है उसकी कि खलवत में होता है। तीसरी चीज़, चौथी, उसका शौक और उसकी तलब जो है रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बढ़ना होता है, पूरी इसकी जो कोशिश होती है वो रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बढ़ना होता है। ऐसा एक आरिफ के बारे में एक वाक़या है कि बायदीद बस्तामी बोल के मशहूर है, उनका एक वाक़या ये है कि वो ख़्वाब में जो है अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, तो कहते हैं मेरे मालिक ऐसा कोसा रास्ता है मुझे दिखा जो तेरे करीब हो जाऊं, तो खा वहाँ से आवाज़ आती है कि खुदी को ख़त्म कर और मेरे पास चला, खुद को ख़त्म कर, खुदी अनानियत को ख़त्म कर और मेरे पास चला। यानी इतनी सी बात है मगर बहुत इसमें ज़ोर है, वाकई आसान बात नहीं है खुद को ख़त्म करके जो है उसकी तरफ बढ़ना, ये आसान बात नहीं है। एक और खसूसियत जो है क़ुर्ब इलाही जो रखने वाले की है, हसन ज़ादे आमली साहब फरमाते हैं, आयतुल्ला हसन ज़ादे आमली साहब, वो थोड़ा मुख्तसर आपको बताऊँ ताकि वाकिफ़ हो थोड़ा बहुत कि एक वाकई औलिया खुदा की क्या सिफात होते हैं। वो कहते हैं ज़ाहिरी जो आप शरीयत में पाक होने की चीज़ होती है, नमाज के लिए आप जो आमादा होते हैं, आपका लिबास पाक होना चाहिए, आपका बदन पाक होना चाहिए, यानी इसके लिए आप क्या करते हैं, वुजू करते हैं, गुस्ल जो भी करते हैं पाक होना चाहिए, ठीक है, लिबास ही पाक होना चाहिए, तब जाके कहेंगे कि नमाज आपकी दुरुस्त है क्योंकि आपका लिबास बदन पाक है। दूसरी चीज़ कहते हैं कि नफ्स आपका बद अखलाकियों से पाक होना चाहिए, ये दर्जा है, ऐसा नहीं कि भाई कह दें कि आप किस तरह कह रहे हैं, ये हसन ज़ादे आमली साहब का बयान है, वो कह रहे हैं कि नफ्स को बद अखलाकियों से पाक रखो, वो शख्स जो पाक नहीं रखता है उनके नज़दीक कहते हैं कि नजीस है, जिस तरह वो बदन और लिबास पाक ना करे नजीस हो तो नमाज दुरुस्त नहीं है, उसी तरीके से वो अगर अपने बद अखलाकियों को अपने नफ्स के अंदर पाक ना करे तो वो नजीस है और इश्काल है उसकी नमाज, नमाज में इश्काल है। फिर कहते हैं अगर वो शख्स अपने दिल के अंदर अल्लाह से हट के कुछ चीज़ को रख रहा है वो भी नजीस है, वो भी नजीस है, इश्काल है नमाज पढ़ना उसके लिए। ये मरातिब है, ये इरफान में बयान होती है शरीयत, तरीक़त और जो है हकीकत, ये आखिरी मरतबा उन्होंने बताया हकीकत यानी क़ुर्ब इलाही कैसा हासिल होती है इंसान के अंदर, अल्लाह से हट के अगर चीज़ कोई आपके दिल में समाई जा रही है तो समझे आपके अंदर क़ुर्ब नहीं है, क़ुर्ब इलाही नहीं है। कई ऐसे औलिया खुदा के औसाफ़ होते हैं, उसमें से एक दो बता के जो है आपकी ज़हमत तमाम। एक औसाफ औलिया खुदा के जो है, एक सलवात पढ़ दी मोहम्मद वाले से, वो राजदार होता है, यानी जो अल्लाह की जानिब से उसे हासिल होता है वो जो है हर किसी को नहीं बयान करता, सिर्फ उसको बयान करता है जिसको तरबियत देना चाहता है, अल्लाह की जानिब से अगर हो कि इसकी तरबियत करो, सिर्फ उसी को मालूम होता है कि अल्लाह की जानिब से इसको क्या क्या चीज़ें हासिल हुए हैं। ये एक खसूसियत में से एक खसूसियत है जो औलिया खुदा को हासिल होता है। मिसाल एक दास्तान से वाज़े करूँ। एक आलिम दीन जो है, बहुत पहुँची हुई शख्सियत, नजफ में एक शागिर्द जाता है, कहता है कि आपको तो कहीं असमा इलाही के जो है तजल्लियात हुए हैं, कुछ एक हमें भी कह दीजिए ताकि कभी भी मुश्किल आ जाए तो उसको यूज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। तो वो कहते हैं अच्छा मैं तुम्हारा को दे डालूँ अमानत अल्लाह की। तो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जो है एक अमानत देता हूँ, वो पहले पहुँचाओ एक जगह, अगर तुम पहुँचा दिए तो फिर मेरे पास आओ, आके जो है मैं तुम्हें बताऊँगा। तो क्या ठीक है, लेके चला रास्ते में, उसको एड्रेस मिला, ये एड्रेस है जाओ पहुंचा दो। वो बड़ा रास्ते में देखा आवाज़ आ रही है, एक डब्बा है उसमें से आवाज़ आ रही है। बोला आखिर क्या होगा आखिर वाकई क्या होगा, मगर उस्ताद ने कहा है कि बोलना नहीं, तहमुल करना है। रास्ते भर जो है सोचता रहा कि आखिर क्या होगा आखिर क्या होगा। बोलते कि क्या पता उस्ताद को क्या पता चलेगा कि मैं खोल दिया है नहीं। तो जैसा वो खोला तो अंदर चूहा था, उड़ के जो है ऐसा चूहा उछला और भाग गए। ये पलट के आया, कहने लगा उस्ताद क्या आपने जो है मुझे जो है मेरा मजाक बना दिया आपने, ये बना दिया। तो बोले कि एक अमानत दिया था तुम्हें कि एक जगह तक पहुँचा दो, तो तुम्हारे से रहा नहीं गया, तो मैं रब्बुल इज़्ज़त की जो असमा इलाही है उसका अगर राज बता दूँ तो तुम क्या क्या करोगे नहीं पता, क्या शर फैलाओगे क्या करोगे नहीं पता। एक और दास्तान बयान करूँ क्या और वाजे होने के लिए। एक शागिर्द जब नया नया होता है उस्ताद के पास आता है तो ये चीज़ों हासिल करने की बहुत उसमें तलब होती है। हसनज़ादे आमोली साहब के पास भी इसी फिक्र में थे जब शुरू शुरू में थे ये मराहिल में, उनके अंदर भी ये चीज़ थी तयुलर्स क्या होगा, समझे ऐसी चीज़ें हासिल हो तो क्या होंगे। तो उनका कहना ये कि जब मुझे तयुलर्स हासिल मसल ये मराहिल जब तय किया तो पता चला कि ये तो इब्तदाई थे चीज़ें, अभी तो कहीं सफ़र करना है, ये तो इब्तदाई चीज़ है, यानी इसके लिए मैं सोच रहा था क्या होगा, एक आखिरी स्टेज होगा, मगर ये कुछ और है, उसके आगे भी कुछ और है और वो मरातब तय किए हैं। एक दास्तान बयान करूं, वाकया बयान करूं जो रोनुमा हुआ है कि एक आलिम दीन के पास एक शागिर्द कहता है कि मुझे जो है वो असमा इलाही दो, वो राज जो है मुझे बताओ। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, तुम एक जगह जाओ, वहाँ से एक शख्स जो है दाखिल होगा, जो पहला शख्स दाखिल हो उसकी हरकत देखो, थोड़ी देर उसको देखो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो गया जाके जो है ठहर गया दरवाजे के पास, पहले निगहबान होते थे शहर में दाखिल होने से पहले। जब वो दाखिल हुआ तो निगहबान जो है बहुत खड़ूस था शहर, तो वो जो है बंडी लेके आ रहे थे, कुछ सब्जी या जो है मेवा लेके आ रहे थे। तो वो निगहबान ने जो है एक रख दिया, बुजुर्ग शख्स था गिर पड़ा। तो वो आया उस्ताद के पास, आगे कहने लगा क्या देखा तुमने। तो कहने लगे मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग शख्स आ रहा है और उसको उसने मारा और वो गिर गया। तो बोले अगर मैं तुम्हें असमा इलाही का इल्म दे देता और तुम्हें ऐसा किसी ने मारता तो क्या करते। तो बोला मैं आजमाता, उसको यूज़ करता, यूज़ करके उसको बताता मैं क्या करता। तो बोले वो जो खाया है ना वो मेरा उस्ताद है, वो मेरा उस्ताद है, मुझे असमा इलाही सिखाया सो वो मेरा उस्ताद। ये तहमुल करना पड़ता है, रब्बुल इज्जत आजमाता है बंदे को, सबके लिए नहीं है ये चीज़ कि हासिल हो जाए और जो है अब वो फिरता फिरे आगा बोले कि जो है आगा वो तो ये पढ़ दे रहा, हवा में उड़ जा रहा, वो कर दे रहा, ये पढ़ जा रहा, समझे आप, वो औलिया खुदा नहीं हो सकता, समझे आप, क्योंकि वो राजदार होता है। जब उसे ज़रूरत पड़ती है और रब्बुल इज़्ज़त से उसको जो है, जब तक हुक्म ना आए जब तक वो जो है राज नहीं खोलता। दूसरी चीज़ क्या है औलिया खुदा की, इल्म है। इल्म जो है अल्लाह की जानिब से हासिल करते हैं, वो किताबी हम जैसा जिस तरह हम पढ़ते हैं उस तरीके से हासिल नहीं होता। औलिया खुदा भी एक लेवल तक जाने के बाद उन्हें भी इसी तरीके के जो है इल्म हासिल होता है, जो इल्म के बारे में काफ़ी बहस कर चुका हूँ दफ्तर में जो है, या मुनासिब नहीं है कि इल्म के बारे में बहस करूँ, इल्म कहाँ से आता है, कैसा जो है हमारे पर दाखिल होता है। तो ये जाने के इल्म जो हम किताबों में पढ़ते हैं, एक आलिम बन गया, समझिए मैं पढ़ के जो है आलिम बन गया, एक फील्ड में जो है अच्छा काम किया, आलिम बन गया, तो मेरे अंदर जो कैफियत होती है और औलिया अल्लाह को जो है, औलिया अल्लाह जो हासिल करता है उसमें जो कैफियत होती है, क्या फ़र्क है? उसको जो इल्म हासिल होता है और मुझे जो इल्म हासिल हुआ है, जो किताबी जो उस्ताद से मैंने जो है हासिल किया है, उसमें यही फ़र्क है। कहते हैं कि वो इल्म जो तुम किताबी पढ़े हो वो तुम्हें घमंड लेके आएगा, अनानियत तुम्हारे अंदर लेके आएगा, मैंने पढ़ लिया, मैं आलिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुरुम खा हूँ, समझे, नहीं मालूम क्या समझ लो। मगर जो अल्लाह की जानिब से हासिल किया है, वो इल्म जो अल्लाह की जानिब से हासिल किया है, वो खुजू लेके आएगा, खुशू लेके आएगा, वो सजदे में गिर जाएगा, वो सजदे हमेशा सजदे में रहेगा, उसकी हालत जो है सिर्फ तवज्जो जो है उसकी रब्बुल इज़्ज़त की जानिब होगी, अपने आप को पस जानेगा, ये हालत उसकी तारी रहेगी, ना कि जो है इल्म फुरुश होगा, ना कि जो है अनानियत खुदी में जो है पड़ा रहेगा। तो हम जो इल्म हासिल करते हैं वो एक मुकदमा है वो इल्म की तरफ बढ़ने के लिए। अगर हम ये इल्म से वो इल्म तक ना पहुँचे तो फिर ये इल्म हासिल करना बहुत ख़तरनाक है हमारे लिए। कई लोग हासिल किए हैं और जो है नहीं पता कहाँ कहाँ चले गए, अल्लाह की जानिब तो नहीं गए कई लोग, मगर कई लोग जो है इसी इल्म को जो है यूज़ करते हुए मरातिब तय किए हैं। गाजी तबातबाई, क्या गाजी तबातबाई मशहूर है कि जो है वो मुश्तहद को ही जो है शागिर्द बनाते थे, जो मुश्तहद होता था उसी को शागिर्द बनाते थे, जो काबिल वाकिन अहकाम से शरीयत से वाकिफ होता था उसी को शागिर्द बनाते थे। उनके पास तकरीबन जो है 98% ले लीजिए जो शागिर्दा बने हैं पूरे क्या है, मुश्तहद है, पूरे मुश्तहद, उन लोगों की तरबियत की है। मगर कुछ ऐसे भी निकले हैं जो हौजा नहीं गए मगर बातनी इल्म जो है उनको हासिल हुआ है, बातनी इल्म हासिल हुआ है, जैसा कि हाशिम हद्दाद। हाशिम हद्दाद के बारे में बहुत ही मारूफ है, वो करबला में रिहा करते थे, उनके बारे में है कि वो शागिर्द है गाजी तबातबाई के, वो भी जो है मुत्तकी परहेजगार आदमी, इंसान कामिल कह सकते हैं बंदे को, मगर ज़ाहिरी हौजा यहाँ नहीं गए हुए थे, ज़ाहिरी हौजा यहाँ नहीं गए थे। उनके पास कई उस्तादा आते थे जो इश्तेहाद की लेवल के थे, उनके पास आके सवालात पूछते थे, वो कहते थे कि ज़ाहिरी इल्म आपके पास है और बातनी इल्म भी है, मेरे पास सिर्फ बातनी इल्म है, मेरे से जो भी पूछना है बातनी राजों के बारे में, बातनी रास्तों के बारे में पूछो, मैं बताऊंगा। ज़ाहिरी किताबी इस्तेला लाके बताओगे वो वाजिबुल वजूद क्या है, वो ये क्या है, वो इस्तेला क्या है, वो इस्तेखरा क्या है, वो तमसील क्या है, लेकिन भाई ये ज़ाहिरी चीज़ आप आलिम है इसके, जो इसके इस्तेलात पढ़ लिए, और जो है मैं बातनी जो असल इल्म है वो मेरे पास है, वो उसके बारे में आप पूछना है तो पूछिए, मैं बताऊंगा कि जो है क्या 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 प्रॉब्लम है। तो वो उनके पास जाया करते थे और हासिल किया करते थे। वो बंदा सुबह से शाम तक लोहार लोहार थे, वो हम। तो कभी कभार जिक्र में ऐसा हो जाता था, आग जो होती है जो अंदर आग से निकालना जाता है, कभी कभार हाथ से जो है निकाल लेते थे, और हाथ तो कुछ नहीं होता था। शागिर्दा देख के परेशान हो जाते थे, उस्ताद क्या हो गया? बोले हाँ क्या हुआ, हाल में नहीं था, देखिए आपके हाथ में देखिए क्या है, एकदम से हाथ से छोड़ो, छोड़ के देखे हाँ, मगर जब हाथ देखे तो हाथ कुछ नहीं। क्यों? जिक्र इलाही में वो आलम से जो है जब राबते में इंसान होता है तो जो है उसको कोई सा भी नुकसान जो है नहीं होता, ना होता, देखा जाए एहसास नहीं होता उसको नुकसान, असलन एहसास नहीं होता। हम दुआ करते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें भी जो है ये चीज़ों की इनायत करे, और जो है हमें वो मुत्तकी परहेज़गार लोगों का दीदार कराए, कि वाकई वो मुत्तकी परहेज़गार को लोगों को आप जो है देखेंगे तो हतमन जो है हमारे अंदर भी एक कैफियत पैदा होगी कि जो है हम भी उन जैसा बने, क्योंकि हम ऐसे ऐसे लोगों को देख रहे हैं हमारे दरमियान में नहीं है वो लोग। वजह क्या है दरमियान में नहीं है हमारे वो लोग? हमारे गुनाह, हमारे कौम के जो है हालात तो देख रहे हैं आप क्या हालात है। बड़े बड़े उलमाए आए यहाँ पर और जो है उन्होंने धुतकारा, अल्लाह का अजाब है कि जो है हमारे दरमियान में ऐसे औलिया खुदा नहीं है, अल्लाह का अजाब है हमारे। हमें दुआ करना चाहिए मेरे मालिक हमारे दरमियान में ऐसे लोगों को रख ताकि हम उन लोगों को देखकर जो है हमारे आइम्मा को याद करें, उन लोगों को देखकर हम जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को याद करें, उसको देखकर जो है खुदा की याद आए। वैसे लोगों को जो है हमारे दरमियान में रख मेरे मालिक के जो है हम उन लोगों को देखें और उनसे तरबियत हासिल करें। अभी हमारी हालत यह है कि हम कौन से भी यहाँ पर हौजे में जाएं, कहाँ पर भी चले जाएं, हमें वो लोग नज़र नहीं आएंगे। क्यों नज़र नहीं आ रहे? कई साल 150 साल से जो तबलीग हो रही है हमारे कौम में, जो बड़े बड़े उलमा आए हैं और उन पर जो है जब वो लोग आए काम करने के लिए कोशिश किए तो जो है उनको काम करना करने के लिए जो है बहुत मुश्किल हुई। जैसा हसन मस्कती आए जो गाजी तबातबाई के शागिर्द थे, गाजी तबातबाई के शागिर्द थे जो बेहजत के उस्ताद हैं, जो यहाँ पर आए जिसका कहना था गाजी तबातबाई का ये वो इंसान है तौहीद में डूबा हुआ इंसान, तौहीद में डूबा हुआ, कईयों को मुसलमान किए हैं वो, समझे। हैदराबाद में यहाँ पर दायरे में दफन है जिनकी खबर के जो है कोई देखने वाला नहीं। मैं एक बार जो है खुम में एक बड़ी शख्सियत से जब मिला तो जो उलमाओं के मुतालिक लिखते हैं कई किताबें जिल्दों में लिखी उन्होंने, जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने जब किताब खोली तो उसमें उनका वाक़या था कि हसन मस्कती जो हैदराबाद में दफन है, हैदराबाद डक्कन में। जब मैं उनसे पूछा कि आगा पता ही है हमारे ही शहर में है, तब बोले अब हैदराबाद ही है, हैदराबाद के हैं जी, हमें बोला हैदराबाद के। तो बताएं कि ख़बर की क्या हाल है उनकी, कहाँ हैं, कुछ हरम वरम बना हुआ है क्या, कुछ हरम या ऐसा कुछ बना हुआ है क्या? मैं बोला कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वो हैरत करे, हैरत करके बोले कि मालूम है क्या शख्सियत थी वो, क्या शख्सियत थी, कैसे लोग थे ये लोग, हमें आगा ही नहीं है। अगर सही शख्सियत भी अगर हमारे दरमियान में आ जाए तब भी आगा नहीं होंगे, क्योंकि हम मुर्दों की ज़िंदगी कर रहे हैं, जिंदों को कैसा पहचानेंगे कि कौन ज़िंदा है क्या है। अगर सही भी इंसान आ जाए आपके दरमियान में तो आप पहचानेंगे नहीं, नॉर्मल। जैसा गाजी तबातबाई जब फिरते थे सड़क पर तो हुसैन तबातबाई कहते थे इनको तो कई बार देखा हुआ हूँ, जब उनको मिलाया गया कि मालूम ये कौन है, तो बोले कि यही गाजी तबातबाई है, तो बोले ये तो देखते रहता हूँ यहीं फिरते रहते हैं नॉर्मल हालत में। ऐसा एक आलिम होता है, हम जो तसव्वुर होता है समझिए कि यानी एक आरिफ आ रहा तो जो है एक स्त्री का वो ना हो कपड़े पे, ऐसा परक जो है एकदम वो ना हो, एकदम जो है वाकई के देखने में जो है एकदम टिप टॉप, एक से एक जूता पहनता हो, एक से एक जो है वो होता है, आया तो मालूम पड़ जाना भाई बड़ा मामा, समझे आप, जो कान अंदर यूं कान मुड़ जाए, समझे आप। आजकल वही हो रहा है कि जितना बड़ा मामा पहना है उन्हें जो है बड़ा आलिम है, तब नजफों से जो है बड़े बड़े अमामे पहन गया है, समझे। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि छोटे अमामे ज़्यादा हो गए, छोटे अमामे ज़्यादा हो गए, तो अब छोटे अमामे ज़्यादा हो गए तो तौहीन है, इतना पढ़ के आए या ना आए, समझा, बड़ा पहन के आओ। नहीं, कोशिश दुनिया में ज़िंदगी कर रहे हैं, यानी देखिए आप, इल्म हासिल करने गए थे, आके जो है क्या हासिल कर रहे हैं, अपने आप को जो है फुरुश बेच रहे हैं, ये हालत है। सोचें वाकई जो है, दुआ करें हम जो है मेरे मालिक हम ऐसे औलिया खुदा से मिला दे वाकई मेरे अल्लाह जो हमें तेरा रास्ता दिखाए, वैसे लोगों से हमें मिला दे। हम दुआ करते हैं कि जो है वाकई अगर हम उन लोगों से नहीं मिले, हम नहीं जानते कैसे लोग हैं वो, अगर देख लें वाकई, मैं देखा हुआ हूँ कैसे लोग हैं, मैं खुद खुम में जो है दर्क किया हूँ, देखा हुआ हूँ वो लोगों को। कुछ दिन अगर आप दर्द उनका सुन लें तो हालत आपकी जो है थोड़ी देर तक वो हो जाती है, गुनाह वुना सबसे जो है परहेज करना शुरू कर दे। वैसी हसन मस्कती जो यहाँ दफन है उनके बारे में ये है कि नजफ में वो जो है हरम में दर्ज दिया करते थे, इरफान का, इरफान का दर्ज हरम में देना बड़ी बात थी वो टाइम पे, क्योंकि इजाज़त नहीं थी इरफान का दर्ज दें वहाँ पर, वो हरम में इरफान का दर्ज दिया करते थे। जो कोई भी वो दर्ज से निकलता था तो महसूस करता था कि अंदर जो है एक आग जल रही है, एक तड़प पैदा हो गई, ये हालत होती थी वहाँ के तालिब जो निकलते थे, बोलते थे एक क्या कर दिया बंदा, एक थोड़ी देर तक एक दर्द के जैसा है, समझा, ये हालत है, एक हालत में आ जाता है इंसान। वो देखा नहीं गया लोगों से, उन्होंने जो है कुछ लोग आए आयतुल्ला के लेवल के लोग, वो टाइम के भी है अभी भी है माशाल्लाह से, आगे गाजी तबाही कहने लगे आप अपने शागिर्द को संभालिया जा, ये जो है ऐसा ना हो कि जो है हमारे उसूल और फिक के जो है दरसा बंद हो जाए, सबकी तवज्जो इस पे चली जा रही, कहीं सूफी ना हो जाए, समझे, एक अजीब हालत जो है वो ना हो जाए, सुन्नी ना हो जाए, जहन जो है यही बैठा हुआ है, उतरेंगे नहीं, जितना पढ़ते जाओ यही है, फलसफा हराम, वो हराम, इरफान हराम, समझे, ये नजफ में जो है अब जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना ही जो है खाली है, समझे, खुला दिमाग नहीं है, सोच रहे थे वही जो शुरू से चल रहे थे आ रहा उसी को जो है अमल कर रहे हैं, जबकि ईरान में इतना काम हुआ है फलसफे पर इरफान पर कि कोई सा भी मसला है उसको हल किए हैं। अगर आप देखेंगे जो भी मसला वहाँ पर फ़लसफ़ा और इरफानी जो मुश्किलात है उसको उन्होंने हल किया है, फिर भी जो है हल करने के बाद भी जो है जहन में बैठ नहीं रहा है, तो वो शख्स को जो है मजबूरन जो है नजफ से निकलना पड़ा। निकलने से पहले कहा था उन्होंने गाजी तबा तबे को, मैं नहीं जाना चाह रहा, आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, मैं कैसा छोड़ दूँ आपको। यकीन मानेंगे जो लोग वहाँ ठहर के देख रहे थे लिखे हैं वो वाक़यात कहते हैं कि कुछ घंटे जो है आपस में गले मिलते रहे, लोग रो रहे थे, आंसुआ बह रहे थे, समझे, और कह रहे थे कि आगे मसलती कि मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। तो वैसे लोग से हम महरूम हैं, हमें चाहिए कि जो है अच्छे अमल अंजाम दे, अल्लाह से जो है खालिस हो जाए, ताकि जो अल्लाह हमें जो है उन लोगों से मुलाकात करा दे और जो है हम वो मराती तय करें जो औलिया खुदा तय करते हैं। वस्सलामु अलैकुम।